الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج هم صحابي رسول سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے. عشرہ مبشرہ میں سے یہ آخری صحابی ہیں جن کے آج ہم حالات دیکھیں گے. سعید نام تھا، ابو الاعور کنیت، والد کا نام زید اور والدہ کا نام فاطمہ. سلسلہ نسب ان کا یہ سعید بن زید بن عمر بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبداللہ بن قرض بن زراح بن عدی بن قاب بن لوئی. اس طرح سے قاب بن لوئی پہ جا کے ان کا شجرہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور نفیل پہ جا کے حضرت عمر سے ملتا ہے، کیونکہ عمر بن خطاب بن نفیل. اور ان کا بھی آپ دیکھ لیں کہ سعید بن زید بن عمر بن نفیل. تو یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سعید کے پردادا تھے وہ حضرت عمر کے دادا تھے. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ سعید اور عمر میں یہ ماں کی طرف سے بھی ایک نسبت ہے کہ جو عمر کی دادی ہیں وہی عورت سعید کی بھی دادی ہے. اور اس کی وجہ کچھ کمپلیکیٹڈ وجہ ہے، لیکن وجہ ایک ہی ہے کہ اس زمانے میں جاہلیت میں جو باپ کی بیوی ہوتی تھی تو اس کے ساتھ سوتیلا بیٹا، یعنی اس آدمی کا سوتیلا بیٹا اپنی سوری باپ کا بیٹا جو لڑکا ہوتا تھا وہ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ شادی کر لیتا تھا. یعنی باپ جب فوت ہو گیا تو سوتیلی ماں کے ساتھ اس طرح سے کیا جاتا تھا، یعنی اس کو بھی وراثت سمجھا جاتا تھا اور اس کو اس کے ساتھ شادی کر لی جاتی تھی. اور لہٰذا اس سے بھی اولاد ہوئی اور باپ سے بھی اولاد ہوئی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت عمر کی جو دادی ہیں وہی حضرت سعید کی بھی دادی لگتی. اور ویسے دیکھا جائے تو نفیل کے ایک بیٹے عمر اور ایک بیٹے خطاب تھے. خطاب کا بیٹا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر کا بیٹا زید اور زید کے بیٹے سعید. تو اس طرح سے اگر آپ بنا لیں نا، اوپر نفیل لکھ لیں، نیچے ان کے دو بیٹے خطاب اور عمر لکھتے، خطاب کے نیچے عمر اور عمر کے نیچے زید اور پھر سعید، تو اس طرح سے آپ کو ذرا زیادہ سمجھ آ جائے گی. ان کا تعلق بنو عدی قبیلے سے ہی ہوا، کیونکہ عمر بن خطاب اسی قبیلے سے تھے. ان کے بارے میں دلچسپ بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ ان کے جو والد تھے وہ کفر اور شرک کے اندھیروں میں بھی توحید پر قائم رہے اور ہر قسم کے فسق و فجور سے دور رہے. بہت یہ انوکھی بات ہے، کیونکہ اس زمانے میں آپ دیکھیں جہاں پہ ہر طرف کفر اور شرک اور بدعت اور ایسی چیزیں تھیں، وہاں پر دین ابراہیمی پہ رہنا کتنی ایک بڑی بات تھی. تو جو زید تھے، یعنی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ قریش کی کوئی عید تھی اور وہ اس کے سلسلے میں شہر سے باہر میلے پہ جا رہے تھے، بڑی بن سمر کے اور جانوروں کو ساتھ لے کے، ان کو سجا کے جانوروں کے بتوں کے سامنے قربان کریں گے. تو یہ اس منظر کو دیکھتے ہیں اور کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے فرماتے ہیں، اے خاندان قریش، ایک بکری جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آسمان سے اس کے لیے بارش نازل کی، जिसका पानी पी के वो सैराब हुई, जमीन में उसके लिए घास उगाई, जिसे खा के उसने अपना पेट भरा। तुम इस बकरी को गैरुल्ला के नाम पे ज़िबा करते हो, ये बड़ी जहालत की बात है। अच्छा, ये अल्फाज सुनने थे कि उनके चचा भी लगा खत्ताब। अब वो पता है कि खत्ताब के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो कितना सख्त आदमी था, हजरत उमर के साथ किस तरह, हजरत उमर का बाप, किस तरह उसने उनको सख्ती के साथ रखा और कितने उनके साथ, यानी बड़ा एक जिसको कहते हैं कि सफाक किस्म का बाप, इतना ज्यादा मारता था। और बहुत ही ऐसे हम वाकया देखते हैं। तो जब इनके साथ मामला आया तो खत्ताब खड़ा हुआ और वो बिफरा हुआ था, उसे आओ देखा ना था, चेहरे पे जोरदार थप्पड़ मारा और कहा तू तबाह हो जाए, हम कितनी देर से तेरी फजूल बातें सुन रहे हैं, अब तो हमें सब्र नहीं है। और साथ ही कौम के और चंद सरफिरों को, उनको भी जरा उभारा, उन्होंने भी जैद पर हमला कर दिया और इतनी तकलीफ पहुंचाई कि उनको मक्का से निकल जाने पे मजबूर कर दिया और उन्होंने हिरा पहाड़ के दामन में जाके पनाह ली। फिर ये कभी आते थे, मक्का आया करते थे और यहाँ पे चोरी छुपे ही आते थे। तो एक रोज कुरैश से आंख छुड़ा के ये आए, जब दूसरे लोग मेले पे गए हुए थे तो देखा कि यहाँ पर कौन लोग रह गए हैं जो कि तौहीद पे हैं सारे। वरका बिन नौफल, उबैदुल्ला बिन जहस, उस्मान बिन हुवैरिस, ये लोग हैं। और कहा जाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब भी थी। तो ये लोग थे जो कि बुत परस्ती के दौर में भी खुद को इससे अलग रखे हुए थे। वरका तो आपको पता है ना, हजरत खतीजा के रिश्तेदार ही थे, और अब्दुल्ला बिन जहश भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन हुए, फूफीजाद। उस्मान बिन हुवैरिस भी कुरैश के एक शख्स थे। तो कहा जाता है उबैदुल्ला और उस्मान तो ईसाई हो गए। वरका का आपको पता है कि वरका बिन नौफल तौरात भी पढ़ते थे, इंजील के बारे में भी जानते थे, आलिम थे इसके। लेकिन जैद जो थे, अभी ये हम बात कर रहे हैं सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद की, तो कंफ्यूज ना करिएगा, हम उनके वालिद की बात कर रहे हैं, सईद की नहीं बात हो रही है। कि जो जैद थे ना, सईद के वालिद जैद बिन अमर, उनका ये था कि वो किसी जगह पर भी मुतमईन नहीं थे। ना उन्होंने ईसाइयत कबूल की, ना उन्होंने यहूदियत कबूल की, बल्कि वो दुनिया में घूमते फिरे, कई जगहों पे गए और उनको हक की तलाश थी। इनको भी वो कहने लगे कि जो ये तौहीद पे जो ये लोग थे, इनको भी कहने लगे कि बाखुदा तुम जानते हो तुम्हारी कौम गुमराह हो चुकी है, दीन इब्राहिम से मुनहरिफ हो गई है। आप लोग मगर सही दीन इख्तियार करने वाले बन जाएं, इसी में निजात है। तो इनकी खुद अपनी जुबानी अपनी बात बताते हैं कि मैंने यहूदियत और नसरानियत की तहकीक शुरू कर दी, लेकिन इन दोनों मजाहिब से मैं मुतमईन ना हो सका। फिर मैंने दीन इब्राहिम की तलाश में दुनिया का कोना कोना छान मारा, बिल आखिर इसी तलाश में मुल्के शाम पहुंचा। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे एक राहिब रहता है जो बहुत बड़ा आलिम है, मैं उससे मिला और मैंने अपनी दास्तान सुनाई। उसने मुझे कहा मेरे ख्याल में आप दीने इब्राहिमी की तलाश में हैं। मैंने कहा हाँ, मैं उसी की तलाश में हूँ। वो कहने लगा आप एक ऐसे दीन की तलाश में हैं जो अपनी असली सूरत में तो कहीं पे भी दुनिया में नहीं पाया गया, यानी उस जमाने में कहीं पे भी लोग दीने इब्राहिमी पे कायम नहीं थे। तो उसने कहा कि आप अपने शहर मक्का वापस तशरीफ ले जाएं, वहां अल्लाह ताला एक नबी मबऊस फरमाएंगे जो दीन इब्राहिम की तजदीद करेगा, अगर वो आपको मिल जाए उसका दामन थाम लेना। जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु, हम उनको रजी अल्लाह ताला अन्हु इसीलिए कहेंगे, आगे हदीस आएगी तो आपको पता चलेगा कि ये तो उनकी शान में कितनी बड़ी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, वो हम देखेंगे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में मक्का की तरफ वापस रवाना हो गए। अभी रास्ते में ही थे और मक्का पहुंचे नहीं थे कि दो कबाइल की कहीं जंग हो रही थी, उनमें से एक ने क्रॉस फायर में इनको कत्ल कर दिया, और जब इनकी आखिरी सांसें थी चल रही, उस वक्त अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाई और दुआ करने लगे, या अल्लाह, अगर तूने मुझे अपने नबी के दीदार जैसी नेमत से महरूम रखा तो मेरे बेटे सईद को इस खैर और बरकत से महरूम ना रख। पता नहीं इनकी दुआ ही थी कि अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई और इनके बेटे को ये सआदत नसीब हुई। इनके दो बच्चे थे, एक सईद और एक इनकी बेटी थी आतिका, आतिका जिनकी शादी हजरत उमर के साथ हुई थी। तो ये इतने, यानी उनके हालात पढ़ रही थी तो ये कितने ज्यादा एक सलीमुल फितरत इंसान थे कि ये कभी बुतों पे चढ़ावे नहीं चढ़ाते थे। हालांकि इनकी कौम सारी ऐसी ही थी, यानी उनके नाम पे कुर्बानी नहीं करते थे, बल्कि वो गोश्त भी नहीं खाते थे जो बुतों के नाम के ऊपर बांटा जाए, दिया जाए। एक कुरैशा से करते थे ना, अपने बुतों के नामों के ऊपर जिबा करते थे, फिर उस गोश्त को बांटते थे, तो ये वो गोश्त भी नहीं खाते थे। आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा इनके अंदर नेकी और तकवा कितना था। आज हमें कोई कह दे तो हम कहते नहीं, फिर शर्म आती है ना, क्या करें। अगर कोई हमें भेज दे किसी के नाम का तो फिर हम उनको रिफ्यूज कैसे कर सकते। बल्कि इनके बेटे यही सईद बिन जैद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, जैद बिन हारिसा के साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुंह बोले बेटे थे ना उस वक्त, ये इस्लाम से पहले की बात है। तो जैद बिन अमर बिन नुफैल, ये सईद के वालिद, ये करीब से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जैद बिन हारिसा ने उनको खाने के लिए बुलाया, तो जैद बिन अमर ने फरमाया, मेरे भतीजे, मैं वो गोश्त नहीं खाता जो बुतों के नाम पर जिबा किया गया। सईद फरमाते हैं, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी वो गोश्त नहीं खाया जो बुतों के नाम पर चढ़ाया गया। बल्कि सईद फरमाते हैं, एक दफा हजरत उमर के साथ मिलके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाए, ये दोनों साहब मुसनद अहमद की ये रिवायत है, तो सईद आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको मेरा बाप याद है और आपको पता है ना कि वो कैसा था। अगर वो जिंदा होते और आपको देखते तो जरूर आप पर ईमान ले आते, उनके लिए दुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मैं उनके लिए जरूर इस्तिग़फ़ार करूंगा, और वो कयामत के दिन आएंगे और वो खुद एक उम्मत होंगे, यानी वो एक बंदा एक पूरी उम्मत के बराबर होगा। अल्लाह अकबर। लेकिन बगैर किसी नबी के, क्योंकि उन्होंने तो ना ईसाइत कबूल की ना यहूदियत कबूल की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ और वहां जैद बिन अमर बिन नुफैल को देखा, और उनके दो दर्जे थे जन्नत में। सुभान अल्लाह, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जन्नत की बशारत दी थी और एक उम्मत के बराबर उनको करार दिया था अकेले को। से पता चलता है कि अगर कोई इस दुनिया के अंदर तौहीद पे कायम रहा, उस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही नहीं पहुंची, आपका ना पैगाम पहुंचा, ना आपके बारे में, मसलन किसी जंगल में जैसे लोग अक्सर पूछते हैं, जी उनका क्या होगा जो ऐसी किसी जगह पर। लेकिन तौहीद तो इंसान के अंदर है ना, तो अगर उसने पाकीज़ा जिंदगी गुजार और अल्लाह ताला के साथ शरीक नहीं किया, तो उम्मीद है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करे। इनके वालिद के बारे में ये भी आता है कि उन्होंने एक बच्चे को पाला था, आमिर बिन रबिया, ये सहाबी रसूल है, लेकिन ये सईद बिन जैद, सॉरी, सईद के वालिद जैद ने इनको पाला था। तो जैद के साथ, जाहिर है, जैद ने इनको बच्चे की तरह, अपने बेटे की तरह हमेशा रखा था। और जब जैद को लगा कि मैं शायद दुनिया में ना रह सकूं, तो उन्होंने आमिर बिन रबिया से कहा कि मैंने तो अपने लोगों का दीन छोड़ दिया, और इब्राहिम अलैह सलाम के दीन को और इस्माइल अलैह सलाम के दीन को अपना लिया, और मैं जानता हूं कि वो इस काबा की तरफ मुंह करके इबादत करते हैं और वो बुत नहीं पूजते। और मैं इंतजार में हूं कि एक नबी जो औलाद इस्माइल में से होगा वो आएगा और वो आने वाला है, मगर मुझे लगता है कि मैं उसको पा नहीं सकूंगा। लेकिन मैं उस पर ईमान लाता हूं, तो अगर तुम लंबी उम्र पाओ और उनको देख लो तो उनको मेरा सलाम कहना। हजरत आमिर बिन रबिया जब इस्लाम लाए थे तो उसके बाद उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जैद का सलाम पहुंचाया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब भी दिया और फरमाया मैंने जैद को जन्नत में देखा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और आज भी इनकी कब्र जो है वो जॉर्डन के पास एक जगह है, वहां पे इनकी कब्र है। और देखिए अल्लाह ताला हक पे रहने वाले के कैसे उनके लिए अल्लाह ताला ऐसे करता है कि उनका नाम खैर के साथ ही लिया जाया रहे और उनका नाम आज तक जिंदा है। इनके बारे में ये भी आता है कि जब किसी को देखते थे ना, कोई अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करना चाहता, जैसे बेटियों को कर देते थे, तो उसको जाके कहते थे कि इसको कत्ल ना करो, मुझे दे दो, मैं उसकी परवरिश करूंगा। जब वो बड़ी हो जाती थी तो फिर पूछ लेते थे कि क्या तुमने लेनी है अपनी बेटी वापस, अगर लेनी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, वो मेरी कफालत में उसको रहने दे। सुभान अल्लाह, क्या ऐसे लोग आप सोच सकते हैं कि ऐसे माहौल में भी ये लोग हो सकते हैं। जिसको अल्लाह ताला कायम रखना चाहे, जिसकी अल्लाह ताला हिफाजत करे, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि या ऐसा माहौल होगा तो फिर कैसे कोई सही रह सकता है। देखें इस कुफर और शिर्क के माहौल में भी, बेशक आटे में नमक के बराबर भी नहीं कह सकते, इससे भी कम, कोई चंद एक ये लोग थे जो तौहीद पे थे, मगर थे तो सही। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले अपनी पूरी कौम में अकेले थे, हमें भी इसी तरह दुआ करते रहना चाहिए अपने बच्चों के लिए कि या अल्लाह कुफर और शिर्क के माहौल में हमारे बच्चों की तू हिफाजत कर, जैसे तूने हजरत जैद बिन अमर की हिफाजत की थी, जैसे तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिफाजत की थी। अल्लाह अकबर। तो ये तो इनके वालिद की बात थी। और देखिए चैन नहीं था उनको अपनी, यानी कितने सफर उन्होंने किए, कितनी हक को पाने के लिए कितनी उन्होंने यानी कुर्बानी ये दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से 5 साल पहले इनकी वफात हो गई थी, यानी अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रिसालत मिली है उससे 5 साल पहले इनकी वफात हो गई थी। तो लिहाजा नबी अलैहि वसल्लम की नबुवत को नहीं पा सके, वो जमाने को नहीं पा सके। तो इनके ये जो बेटे साईद थे, साईद भी जाहिर ही बात है उन्होंने एक ऐसे घराने में आंख खोली जिस घराने में उन्होंने तौहीद ही देखी। उन्होंने अपने बाप को हमेशा हक के लिए आवाज बुलंद करते हुए ही देखा, उन्होंने अपने बाप को बुत परस्ती की मुखालफत करते हुए देखा। तो ऐसा बेटा फिर खुद सोचे, और फिर बाप की दुआ भी है, तो फिर ऐसा बेटा फिर किस तरह का होगा। हजरत जैद का ये, हजरत साईद का यही पता चलता है कि वो शुरू में ही इस्लाम ले आए थे, और ऐसे वक्त में जबकि अभी बहुत कम लोग इस्लाम लाए थे। कहा जाता है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की दावत के ऊपर जो लोग इस्लाम लाए थे उनके फौरी बाद ये इस्लाम लाए थे। बाज जगह आता है हजरत खब्बाब बिन अरत के दावत पर ये इस्लाम लेकर आए थे, यानी बिल्कुल शुरू के लोगों में से थे। और इनकी इनको उस तरह से प्रोसिक्यूशन का सामना नहीं करना पड़ा, उस तरह से मुखालफत नहीं हुई, इसलिए कि जब ये घर आए तो हालांकि अभी कहा जाता है कि ये 20 से भी कम इनकी एज थी जब ये इस्लाम लेकर आए। अब हम हजरत सईद की बात करें, 20 से भी कम एज थी, लेकिन इनकी शादी हो चुकी थी। और शादी किससे हुई? हजरत फातिमा बिनते खत्ताब बिन नुफ़ैल, हजरत उमर की जो बहन है, उनके साथ इनकी शादी हुई हुई थी। तो घर आके अपनी बीवी को पैगाम दिया और वो भी इस्लाम ले आए। इससे हमें पता चलता है कि हजरत उमर तो बाद में इस्लाम लाए थे ना, लेकिन उनकी बहन पहले ही इस्लाम ला चुकी थी, बहनोई पहले ही इस्लाम ला चुके थे, बल्कि यही जरिया बने हजरत उमर के इस्लाम लाने का। कि जैसे कि हमें वो वाकया पता है कि जिस वक्त हजरत उमर तलवार लेके जा रहे थे और हजरत नुआइम सामने से आ रहे हैं, और वो देखते हैं कि इस तरह उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के तेवर तो कुछ सही नहीं है, और जब पूछा तो पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा है, तो तौईन ने डाइवर्ट करने के लिए कह दिया कि जाओ तुम अपने घर का तो पता लो ना, अपनी बहन के घर तो जाओ पहले, अपने तो खानदान को देखो। और उन्होंने अभी तक इस्लाम अपना छुपाया हुआ था, और वजह क्या थी, हजरत उमर के डर से। आप देखिए उमर के वालिद खत्ताब इनके वालिद सईद के वालिद को टॉर्चर करते थे कि तुम क्यों तौहीद पे हो, और उमर से इनको डर लगता था। अब बेटा है तो एक का बेटा, एक बेटा दूसरे के बेटे को अब टॉर्चर करने के पर तुला हुआ है कि जो है कोई भी अगर ईमान लाएगा, या हजरत उमर ने तो अपने खानदान में कहा था कि कोई भी इस्लाम की तो बात भी ना करे वरना तो वो खुद उसे निपटेंगे। आपको खुद ही मालूम है कि अपनी लौंडी के ऊपर वो उन्होंने कितना टॉर्चर किया था, तो लोग डरते थे बहुत ज्यादा हजरत उमर से। लिहाजा आप देखें जहां पे दोनों के बाप इसी तरह इस चीज के ऊपर थे, खत्ताब ने जईद को टॉर्चर किया एक तरह से और मक्का से ही निकाल दिया। अब खत्ताब जो है उनके बेटे उमर रजी अल्लाह हजरत सईद के पीछे पड़ गए कि वो अगर इस्लाम लेकर आए हैं तो मैं उनको जाके देखता हूँ। तो जब वो वहां पर गए थे, और आप जानते हैं ये वाकया हम पढ़ चुके हैं कि उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, और हजरत उमर की दस्तक से ही पता चल रहा था कि कोई कितना गुस्से में है, और अंदर से उनको आवाजें भी सुन गई। उस वक्त हजरत खब्बाब जो थे वो टीचर थे कुरान के, वो कुरान पढ़ा रहे थे इन दोनों को, हजरत सईद को और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला। तो उस वक्त खब्बाब तो जाकर छुप गए क्योंकि वो जानते थे कि मेरी तो खैर नहीं है, ये दोनों तो फिर भी रिश्तेदार हैं, एक बहन है एक बहनोई है और वैसे भी कजन है और एक ही खानदान है एक ही कबीला, इनकी तो कुछ ना कुछ खैर हो सकती है लेकिन मुझे तो मार ही देंगे। तो वो तो छुप गए जाके, और बाकी हजरत उमर आई और उन्होंने पूछा भाई कि क्या पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं कुछ नहीं। तो फिर उसके बाद जब हजरत उमर ने गुस्से में हजरत सईद के ऊपर हाथ उठाए और बहन बचाने के लिए आ गई, और उनको भी जब एक लग गई और वो लहूलुहान हो गई, तब उमर को बड़ा पछतावा हुआ और बहन कहने लगी कि उमर हम इस्लाम ले आए, अब जो करना कर लो। उस वक्त फरमाते हैं कि लाओ क्या पढ़ रहे थे तुम मुझे भी दिखा। हजरत उमर उन लोगों में से थे, आपको पता है जो कम ही लोग थे जो पढ़ना लिखना जानते थे, तो उन्होंने सूरह ताहा जब पढ़ी और दिल में इस्लाम घर कर गया। उस वक्त कहने लगी ये तो बहुत खूबसूरत कलाम है। उस वक्त हजरत खब्बाब निकले थे और उन्होंने फरमाया था कि लगता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ए उमर तुम्हारे हक में कबूल हो गई। तो आपको पता है कि ये वो सईद बिन जैद, बहुत कम लोग जानते हैं इनको, लेकिन ये हैं वो हजरत सईद बिन जैद। ये वाकया तो आप लोग जानते होंगे लेकिन शायद ये नहीं पता होगा कि ये अशरा मुबशरा में से थे और इतने खैर के इंसान। बहुत ही इनके बारे में कम हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इसलिए शायद कि इनकी तबीयत कुछ ऐसी थी कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना अपनी जिंदगी बड़ी खामोशी के साथ गुजारने वाले, कुछ ज्यादा बड़े सुकून के साथ इन्होंने खामोशी के साथ अपनी जिंदगी गुजारी, कोई बहुत ज्यादा बढ़ बढ़ के आगे होके कुछ नहीं किया, ऐसा अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहे या एक गुमनाम से मुजाहिद रहे। बल्कि इनका एक कौल आता है कि फरमाते थे अगर मुझे नूह अलैहि सलाम की जितनी जिंदगी मिल जाए तो भी मेरे लिए उससे भी ज्यादा महबूब होगा कि मैं जाऊं और अल्लाह के रास्ते में लड़ूं और मेरे चेहरे पर खाक हो और मैं गुमनाम रहूं। इनकी आजी है ना, तो इनको उस तरह से मतलब अपनी, हालांकि बनी बनू अदी जो था उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मुखालफत की थी, लेकिन इनके अपने खानदान ने ऐसी मुखालफत कुछ नहीं की। जैसे मैंने आपको बताया कि बीवी भी मुसलमान हो गई और फिर वालिद भी ऐसे ही इसके ऊपर रहे थे, तो फैमिली में कुछ ना कुछ तो असर होता है। फिर उसके बाद जिस वक्त तो हजरत उमर मुसलमान हो गए, तो उसके बाद जो हिजरत हुई हबशा की तरफ, तो इन्होंने हिजरत नहीं की थी क्योंकि इनके ऊपर कुछ ऐसे मजालिम नहीं थे। और फिर आप खुद सोचें कि जिनके खानदान में उमर हो उनको डिफेंड करने के लिए उनके ऊपर कौन हाथ डाल सकता है, इसीलिए हजरत उमर ने भी नहीं हिजरत की हबशा की तरफ और इन्होंने भी नहीं की। हाँ, जब मदीना की तरफ हिजरत हुई तो तब इन्होंने हिजरत की थी अपने खानदान समेत। फिर इन्होंने अपनी जिंदगी में तमाम गजवात में हिस्सा लिया सिवाय गजवाए बदर के। गजवाए बदर में भी क्या हुआ कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे हजरत तलहा बिन उबैदुल्ला का मैंने आपको बताया था कि उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान के काफले की खबर लेने के लिए भेजा था, तो उनको और सईद बिन जैद इन दोनों को भेजा था, ठीक है। और ये वापस जब पहुंचे थे तो इतनी देर हो चुकी थी कि बदर की जंग खत्म हो गई थी और मुसलमान फतह की खुशियां मना रहे थे। तो इनको बड़ा रंज हुआ कि मैं नहीं इसमें शरीक हो सका, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बदरी सहाबी करार दिया, इसलिए कि उसी सेम ही चीज के मिशन पे ये भी निकले हुए थे और माले गनीमत में से भी इनको हिस्सा दिया। तो इससे हमें ये पता चला कि ये बदरी सहाबी हैं मगर जंग में नहीं हिस्सा ले सके। अब आपको अगर टेस्ट में आ जाइए कि वो बदरी सहाबी करार दिए गए थे या बदरी सहाबी थे, तो हाँ, लेकिन क्या बदर में लड़े थे? तो नहीं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर ये कातिबे वही भी थे, ये उन चंद सहाबा में से थे जिनको लिखना पढ़ना आता था और इनको शर्फ हासिल हुआ कि वही को लिख सके। बड़ी शान की बात है ये, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतदार समझते होंगे उनको ही जिम्मेदारी देते होंगे ना। तो इनका किरदार, इनके वाकई ऐसे होंगे। अच्छा, एक और बात कि यरमूक की जंग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुई थी उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया था और उसमें बड़ी जान फिशानी के साथ लड़े थे। और खुद फरमाते हैं कि जंगे यरमूक में मुजाहिदीन की तादाद 24,000 थी और रूमी फौज की तादाद 1,20,000 थी। वो हमारी तरफ बड़े जाहो जलाल और शानों को शौकत से बड़े चले आ रहे थे। यूं मालूम होता था जैसे कोई पहाड़ हमारी तरफ चला आ रहा है। लश्कर के आगे आगे बड़े बड़े पोप और पादरी सलीब उठाए हुए बावाजे बुलंद विर्द करते चले आ रहे थे, जैसे जो उनकी सिंगिंग होती है, जो उनकी जो यानी ये अपना पढ़ते हैं ना, जो अपने तराना या जो भी अपना पोइम्स पढ़ते हैं, तो वो पढ़ते चले आ रहे थे। पूरे लश्कर की आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी। और फिर आप देख लेना कि इनके घोड़े और इनके हथियार और इनकी ये सब चीजें कितनी मतलब शानो शौकत वाली चीजें थी इनके पास। तो ये बड़े चले आ रहे थे। अब कहा फरमाते हैं कि जब मुसलमानों ने इनकी ये हालत देखी तो उनकी कसरत और जाहो जलाल से कुछ खौफजदा हो गए, इसलिए क्योंकि जो शुरू के मुसलमान थे जाहिर है उनके ऊपर एक रोब तारी हो गया कि ये कैसा बड़ा लश्कर, अजीमो शान लश्कर आ रहा था। इस नाजुक मौके पे अबू बैदा बिन जरा जोश और जज्बे से मुसलमानों को जिहाद के लिए उभारते हुए वो फरमाते हैं कि इन तंसुरुल्लाह यंसुर, अगर तुम अल्लाह की मदद करो कि तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा दे। अल्लाह के बंदो सबर करो, बेशक सबर ही कुफर से निजात और अल्लाह ताला की खुशनूदी और को लाने वाला है, उसका बायस बनने वाला है। तो हजरत सईद फरमाते हैं मुजाहिदीन की सफों में से एक शख्स आगे बढ़ा और उसने अबू बैदा से कहा, अब ये शख्स का नाम नहीं किताबों में लिखा हुआ लेकिन कोई शख्स था, उसने अबू बैदा से कहा, मैंने आजम किया है कि मैं अभी अपना फरीजा अंजाम दूंगा, यानी मैं शहीद हो जाऊंगा। क्या आपको कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई पैगाम देना है? सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अबू उबैदा ने फरमाया हाँ। अब ये उन्होंने जोरदार खुतबा दिया ना, तो उसके बाद ये शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं जा रहा हूं और आप बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई पैगाम देना है, यानी कि मैं तो उनसे मिलने वाला हूँ अब जाके, शहीद होने वाला हूँ। तो अबू उबैदा ने फरमाया हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा और तमाम मुसलमानों का सलाम कहना और ये अर्ज करना कि अल्लाह ताला ने जो वादा हमारे साथ किया है उसको हमने सच पाया। तो हजरत सईद फरमाते हैं कि मैंने उस आदमी की बात सुनी और उसको देखा, वो उसी वक्त अपनी तलवार नियाम से निकालता है और दुश्मनों से लड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। इसके बाद कहते हैं मैंने भी अपना नेजा संभाला और मैं आगे बढ़ा। और दुश्मन पे टूट पड़ा, और अल्लाह ताला ने मेरे दिल से दुश्मन का खौफ निकाल दिया। जब इन्होंने ये किया ना, जब इन्होंने ये कदम उठाया, जब ये गए हैं, तो ऐसा जोश आया इनके जाने से फौज के अंदर कि सब खड़े हो गए, सब निकल पड़े। वो कमांडर नहीं थे, मगर उनकी बहादुरी ने सबको मोटिवेट किया। और उस वक्त तक मुसलमान लड़ते रहे जब तक उनको फतह नहीं मिल गई। उसके बाद दमिश्क यानी शाम की जो फतह भी थी, तो अबू उबैदा बिन जरा के कयादत में लड़ी गई। और फिर वो उसके बाद उस जंग के बाद दमिश्क जब फतह हो गया, तो अबू उबैदा तो यरूशलम की तरफ निकल गए, तो पीछे से इनको गवर्नर बनाया। ये दमिश्क के पहले गवर्नर थे। और सोचे, हजरत सईद और अबू उबैदा शुरू के मुसलमानों में से, और इन्होंने क्या देखा था, मक्का में क्या देख चुके थे, कितनी परसिक्यूशन, कितनी ज्यादा मुसलमानों के साथ जो उनके साथ जुल्म व सितम था, वो सब देख चुके हैं। और अब इस्लाम की शानो शौकत देख रहे हैं कि रूमियों को भी, उनके गढ़ को एक तरह से फतह कर ली, उनके आलीशान महल्लात और ये सब कुछ। और दमिश्क तो बहुत उनका बड़ा एक एरिया था ना, ऐसी जगह थी कि जो जहां पे बड़े उनकी आलीशान चीजें थी, बड़ी उनके आलीशान महल्लात थे और सब था। और इमेजिन करें कि जब ये उनमें दाखिल हुए होंगे तो कैसा लगा होगा। लेकिन इनको ये अच्छा नहीं लगा, इनको ये शानो शौकत और ये इनके मिजाज में ही नहीं था। तो हजरत उमर को खत लिख भेजा कि मुझे इजाजत दें कि मैं गुमनाम मुजाहिद ही रहूं, इसलिए कि मुझे नहीं गवर्नर चाहिए, लिहाजा आपको जब मेरा ये खत मिले तो किसी और को गवर्नर अपॉइंट कर दें, और मुझे बाकी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए रहने दें। कैसे लोग थे ना, इनको ना जाहो जलाल, ना ये शानो शौकत जो मिली भी हुई है, उसके साथ भी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई साथ भी नहीं। अभी वक्कास ने जो हदीस रिवायत की थी, आपको याद है, जब वो अलग थलग होके रह रहे थे और उनके बेटे ने आके कहा था कि आप क्या यहाँ पे और लोग वहां पे मारते ले रहे हैं, और आप जो ये इधर अलग था लोगों के बैठे हैं, तो क्या फरमाया था कि अल्लाह ताला महबूब रखता है मुत्तकी को और गनी को और खफी को, छुपा रहे जो गुमनाम सा रहे, उसको नहीं है कि मुझे आगे बढ़ के जो है ना मुझे कुछ दिया जाए, मुझे कुछ ये एजाज मिले या मुझे बड़े ओहदे मिलने चाहिए। अल्लाह अकबर। तो अदत उस्मान के दौर में कूफा में एक जमीन का बड़ा हिस्सा इनको उस्मान ने तोहफातन दे दिया था, क्योंकि वो बहुत बड़ी इस्लाम की फतुहात हुई थी, तो आगे आगे बहुत जमीन थी, तो इनको भी एक हिस्सा दिया था। इन्होंने कुछ अरसा कूफा में अपने खानदान के साथ गुजारा। और उसके बाद हजरत मुआविया के दौर में, जब कूफा से जो कैपिटल था वो दमिश्क की तरफ मूव हो गया, तो ये वापस मदीना आ गए, और मदीना से बाहर वादी अलाकीक है, यहाँ पे इन्होंने रिहाइश इख्तियार कर ली, और यहीं पर अपनी जिंदगी का बकिया हिस्सा गुजारा। बड़ी गुमनामी से नहीं, यानी किसी जो जितने भी फितने उठे हजरत उस्मान के दौर में, बाकी बाद में भी हजरत अली के साथ जंग, ये उस वक्त तक जिंदा रहे थे, जंगे सिफीन हुई, जंगे जमल हुई, किसी में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अपनी एक अलग तरह की एक जिंदगी गुजारी। इनके बारे में आता है, इतनी आजी इनके अंदर थी, एक आजिज मिजाज इंसान की ये सिफत हो सकती है, कि इनके बारे में आता है कि बाद में जब मुआविया खलीफा थे, तो मुआविया ने ये ऐलान किया कि मेरे बाद मेरा बेटा यजीद जो है वो बनेगा खलीफा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि यजीद, मुआविया के भाई का नाम भी यजीद था, यजीद बिन अबू सुफियान। वो फिर जब मैंने आपको ये बताया ना, दमिश्क के जो गवर्नर थे, इनसे इन्होंने कहा हजरत सईद बिन जैद ने कि मैं अब नहीं गवर्नर रहना चाहता, तो अबू उबैदा बिन जर्राह ने फिर उसके बाद यजीद बिन अबू सुफियान को वहां का गवर्नर मुकर्रर कर दिया था। तो एक तो वो यजीद है, और एक हजरत मुआविया के बेटे हैं यजीद, यजीद बिन मुआविया। तो अभी मुआविया जिंदा थे कि उन्होंने ये कह दिया कि मेरा बेटा मेरे बाद खलीफा बनेगा। तो इनके बारे में आता है कि इनको भी कहा गया कि ये उसके हाथ के ऊपर बैत करें यजीद के, तो इन्होंने इनकार कर दिया। जब इन्होंने इनकार किया तो इनके पीछे बहुत सारे लोगों जो मदीना के थे उन्होंने भी इनकार कर दिया। लोग इनको देखते थे, ये कबायर सहाबा में से लोग इनको देखते थे जो ये कर रहे हैं, फिर उस तरह उसी को फॉलो करने की कोशिश करते थे। तो मरवान जो मदीना का गवर्नर था, मरवान बिन हकम, बाद में ये भी खलीफा बना, तो उसने मुआविया को खत लिखा कि सईद बिन जैद तो बैत नहीं कर रहे, क्योंकि मरवान के हाथ पे करनी थी एज अ रिप्रेजेंटेटिव, मरवान ले रहा था बैत ना यजीद के लिए। तो मरवान ने खत लिखा कि सईद तो बैत नहीं कर रहे। इस पर मुआविया ने एक फौजी दस्ता भेज दिया इनके घर, और फौजियों ने आके सईद से कहा कि आप बैत करें, मरवान के पास जाएं और बैत करें। इन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने एक फौजी ने कहा मैं आपको कत्ल कर दूंगा अगर आपने बैत नहीं की, तो सर उड़ा दूंगा आपका। तो ये हंसने लगे, फरमाया तुम मुझे कत्ल करोगे अगर मैंने बैत ना की? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं मुआविया और यजीद से उस वक्त लड़ा था जब वो काफिर थे और मैं मुसलमान था? ये जो फतह मक्का के मौके पर, मुआविया तो उस वक्त मुसलमान हुए थे, तो तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तो तब का मुसलमान हूं जब ये लोग काफिर थे। वो खामोश हो गया, फिर वो वापस चला गया अपना सा मुंह लेके, और इन्होंने बैत नहीं की थी। इतने ये बाद में यजीद की खिलाफत तक तो ये जिंदा ही नहीं रहे थे, लेकिन इतने ज्यादा ये हक पर कायम रहने वाले थे। और इनके बारे में और इनके आजी के बारे में आपको ये बात बताऊं कि मुगैरा बिन शोबा जब गवर्नर थे कूफा के, ये कूफा में रहते थे, तो कुछ इनके उसके दरबार में दाएं और बाएं बहुत सारे कूफा के लोग बैठे रहते थे। सईद आए तो मुगीरा ने उनको अपने पास बिठा दिया, पास बिठा लिया, बड़ी इनको इज्जत और इकराम दिया, और बहुत इनके साथ अच्छा किया। तो इतने में एक आदमी आया और उसने आकर मुगीरा की तरफ मुंह करके और उसने बहुत बुरी बुरी बातें कहना शुरू कर दी, बहुत बुरी बातें और बहुत नाजेबा अल्फाज कहना शुरू कर दिए किसी के बारे में। इन्होंने पूछा मुगीरा से कि ये किसके बारे में बात कर रहा है? मुगीरा ने बताया ये हजरत अली को ऐसा कह रहा है, उनके बारे में गुस्ताखाना बातें कर रहा है। सईद से जब्त ना हो सका, बोले मुगीर बिन शोब, लोग तो तेरे सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान निसारों को गालियां देते हैं और तू मना नहीं करता, तुम उसको रोकते नहीं हो? मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैंने खुद इन कानों से सुना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए, और इस दिल ने याद रखा है जो आपने फरमाया कि अबू बकर फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना व अली फिल जन्ना व उस्मान फिल जन्ना व तलहा फिल जन्ना व जुबैर फिल जन्ना व अब्दुर्रहमान फिल जन्ना व साद बिन मालिक। साद बिन मालिक साद बिन अबी वक्कास को, मालिक जो है ना अबी वक्कास का नाम था, साद बिन मालिक फिल जन्ना, और एक नवा भी था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका नाम, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बता सकता, मैं उसका नाम नहीं ले सकता जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी। लोग चीखने लगे कौन है वो नवा आदमी, हम आपको अल्लाह की कसम देके पूछते हैं कौन है वो? फरमाया वो मैं हूं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10वें थे। अल्लाह अकबर, अपना नाम नहीं लिया, ये देखें अशरा मुबशरा के ही नाम है ना। तो नाम नहीं लिया, कहते मैं नवे का नाम नहीं बता सकता, वरना कोई और हो तो सबसे पहले अपना नाम बताए कि मेरे बारे में फरमाया था, फखर से बताए। लेकिन देखिए सहाबा कराम को कैसे, जब भी पढ़ते हैं तो सोचते कैसे वो लोग थे ना, उनको ये परवाह नहीं थी कोई मेरी तारीफें करे, कोई मेरे बारे में बातें करे, कोई मुझे ऐसा कहे। अल्लाह अकबर, वो गुमनामी को पसंद फरमाते थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको बुलंद किया। वो अपने आप को छोटा करते थे, अल्लाह ने उनको ऊंचा कर दिया। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया वल्लाही एक गजबा जिसमें कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते हुए शरीक हुआ बेहतर है उससे कि जो नूह अलैहि सलाम की जितनी उम्र पाए और सारी उम्र नेकियां करता रहे, तो क्या बेहतर है आप सल्लम के साथ एक गजबे में भी आपका दिफा करना, ये बेहतर है। इतनी 950 साल की किसी को उम्र मिल जाए, इससे भी ज्यादा 950 साल को उन्होंने तबलीग की थी सर, इतनी उम्र मिल जाए और वो नेकियों से भरपूर उम्र हो, भी वो एक गजवा बेहतर है। अल्लाह अकबर, इनकी थिंकिंग कैसी थी। सहाबा कराम के साथ एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे हिरा की तरफ, और हिरा पहाड़ हिलने लगा, तो यानी झूमने लगा जैसे खुशी से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्कुन हिरा, रुक जा हिरा, तुझ पर नबी है, सिद्दीक है, शहीद है, इसके अलावा और कोई नहीं। और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद, अब्दुर्रहमान बिन औफ और सईद बिन जैद थे। अब यही वाली हदीस आपको पता चलती है ना ओहद के बारे में भी, तो ओहद के बारे में भी है, और लेकिन ओहद के ऊपर सिर्फ अबू बकर सिद्दीक, उमर और उस्मान थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। लेकिन जब हिरा वाली जो हदीस है उसमें ये वाले अशरा मुबशरा सहाबा का गुलदस्ता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, महान अल्लाह। तो ये ऐसे आजिज मिजाज इंसान थे, इनका हुलिया मुबारक ये आता है कि लंबा कद था और लंबे बाल थे, घने बाल थे और सांवला रंग था। इनकी अजवाज के बारे में आता है कि इनकी बीवियां और लौंडियां मिला के 10 थी और इनकी औलाद 30 से जायद थी। सुबहान अल्लाह, जो कूफ और मदीना में बसे जाके, तो 30 से जायद थी इनकी औलाद। इन्होंने अहादीस जो रिवायत की है 30 के करीब है, लेकिन अगर उनकी रेपिटेशन वाली निकाल दी जाए तो कोई 7-8 अहादीस बनती है मुश्किल से। एक और बात इनके बारे में बहुत जो अहम है वो ये कि ये मुस्तजाबुद्दावात, ये भी मुस्तजाबुद्दावात है, यानी इनकी दुआएं कबूल होती हैं। और इस बारे में जो एक रिवायत आती है खास तौर पे मुस्लिम वगैरह में भी ये रिवायत मौजूद है कि एक औरत थी उरवा बिनते उवैस, उसने ये इल्जाम आयद किया इनके ऊपर कि इन्होंने अपने इख्तियारात से फायदा उठाते हुए मेरी कुछ जमीन पे कब्जा कर लिया, नाजायज कब्जा। वो जहां जाती हर बंदे के सामने इसका तस्करा करती और अपनी मजलूमियत का ढूंढोरा पीटती। बिल आखिर उसने मदीना के गवर्नर मरवान बिन हकम की अदालत में हजरत जैद के खिलाफ दावा दायर कर दिया। अल्लाह अकबर। अब आप सोचें कि अशरा मुबशरा सहाबी हैं और एक औरत ने उठ के ये शिकायत कर दी, और उसने एक जमीन का हिस्सा जो वादी अफीक में ये रहते थे ना, वहीं पे जमीन का एक हिस्सा उसने कहा कि ये मेरा था और इन्होंने नाजायज इस पे कब्जा किया हुआ। अल्लाह अकबर। तो जब दावा दायर कर दिया तो मरवान ने सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस सिलसिले में बात करने के लिए उनके पास एक वफद भेजा। सईद पर ये बात बड़ी भारी गुजरी, बड़ी अफसरदगी के आलम में फरमाने लगे, ये सब लोग मेरे मुतल्लिक क्या ख्याल करते होंगे कि मैंने इस औरत की जमीन हथिया ली, तो बड़ा जुल्म है। मैं भला ऐसा जुर्म कैसे कर सकता हूँ जबकि मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुना है। अब देखिए मैंने आपको बताया ना जो अहादीस इन्होंने रिवायत की है उनमें से एक हदीस ये भी है कि जिसने किसी की एक बालिश, बालिश कितना होता है जितना ही हाथ है, एक बालिश जमीन इतनी सी देखिए आप सोचे ज्यादा की बात नहीं है, जैसे हमारे यहाँ तो जरा जरा सी अपनी बाड़ आगे करके, अपनी दीवार आगे करके कहते तो क्या हो गया, इतनी सी दीवार ही है, एक बालिश्त भी अल्लाह अकबर जमीन नाजायज तौर से अपने कब्जे में ले ली, कयामत के दिन सातों जमीनों का तौक उसके गले में डाला जाएगा। अल्लाह अकबर, एक जमीन का तौक भी कोई उठा नहीं सकता, सातों जमीन का तौक, सातों जमीन को तौक बना के ना उसके गले में डाल दिया जाएगा। और कहां वो लोग जो अपने यानी रिश्तेदारों की जमीनों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, जो उनके वारिस नहीं है लेकिन वो वारिस बन के बैठ जाते हैं, और बहनों की जमीनों के ऊपर या भाइयों की जमीनों पे या रिश्तेदारों की चचा पुप्पी वगैरह की जमीन के ऊपर नाजायज कब्जे के में पूरे पूरे प्लॉट हजम कर जाते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं पे भी जाके अपना अपने नाम जाली कागजात बनवा के और अपने नाम पे कर लेते हैं, या कहीं पे जाके खुद ही उस पे कब्जा करके बैठ जाते हैं, किसी का घर मिला खाली पड़ा हुआ था उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, वो कैसे जवाब देंगे जब एक बालिश जमीन के ऊपर ये हाल है। तो जो एक बालिश तो आजकल कौन लेता है, पूरी पूरी जमीनें हजम कर लेते हैं, उनका क्या हाल होगा। तो सोचे खुद उन्होंने ये हदीस बयान की कि मैं कैसे ले सकता हूं जबकि मैंने तो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है। उसके बाद उन्होंने फरमाया कि ठीक है मैं ये जमीन देता हूं इस औरत को, ये ले ले, ये ले ले ये जमीन, और लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह तू जानता है मैं बेगुनाह गुनाह हूं और मैंने इस औरत पर कोई जुल्म नहीं किया, इलाही तू जानता है कि वो झूठी है और उसे उसके झूठ की ये सजा दे दे कि अंधा करके उस कुएं में गिरा जिसके मुतालिक इसने मेरे खिलाफ दावा दायर किया है, और मेरे हक में ऐसी रोशन दलील दे जिससे लोगों के सामने ये बात वाजे हो जाए कि मैंने इस औरत पर कोई जुल्म नहीं किया। आपको पता है कि ये एक सहाबी के ऊपर ये इल्जाम लगाना कितनी बड़ी बात थी, क्योंकि वो औरत अल्लाह की कसमें खा खा के कहती थी कि इसने मेरी जमीन हथियाई। अब देखें जो एक शरीफुल नफ्स और नेक इंसान होता है ना, उसकी इज्जत बहुत बड़ी एक चीज होती है। एक है बदमाश जिसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं वो एक अलग बात है, लेकिन एक नेक इंसान के ऊपर जब कोई हर्फ उठाया जाता है, कोई इल्जाम लगाया जाता है ना, तो फिर दीन का नाम भी खराब होता है। और कोई क्या कहेगा कि सहाबी रसूल ऐसे ही रहती, दुनिया तक एक बात हो जाती है ना कि फलां सहाबी ऐसे थे क्या। तो ये कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। वो लोग पैसे और उहदों और इन चीजों को नहीं देखते थे, लेकिन उनके ऊपर जब एक झूठा इल्जाम लगा तो रहती दुनिया तक कहीं एक सहाबी रसूल के साथ ऐसी बात ना आ जाए जो कि गुनाह की और जुल्म की बात। इसलिए उन्होंने ऐसी बद्दुआ दी कि अल्लाह ताला ये सबके सामने रोशन कर दे, सबके सामने वाजे हो जाए कि मैंने इस पे कोई जुल्म नहीं किया। और आपको पता है ना जो मजलूम की आह होती है उसके और अल्लाह ताला के अर्श के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। अल्लाह ताला ने फरमाया हदीस में आता है चाहे वो मजलूम काफिर ही क्यों ना हो, काफिर भी अगर मजलूम है ना तो अल्लाह ताला की बारगाह में उसकी भी दुआ जो है डायरेक्ट पहुंचती है। जो आज जुल्म करते हैं, चाहे किसी पे झूठा इल्जाम लगा देना, बोहतान बांध देना, किसी लड़की पे, किसी औरत पे, किसी के ऊपर कोई, किसी को डिफेम करना, किसी के खिलाफ प्रोपोगेंडा करना, किसी की जमीन हथिया लेना, या कोई तरह का भी जुल्म, और आज तो बहुत बड़े बड़े जुल्म हो, वो कभी ना सोचें ये उनको ऐसे ही जाने दिया जाए। इस दुनिया में भी अल्लाह ताला दिखाता है, इस दुनिया में भी मिलता है। तो क्या हुआ कि जब इन्होंने ये बद्दुआ की तो थोड़े ही अरसे बाद वादी अकीक में उस, अच्छा ये भी आपको बता दूं, लोगों ने जाके उस औरत को बताया भी कि तुम्हारे खिलाफ उन्होंने ऐसी बद्दुआ की, तो उसने कोई परवाह नहीं की, वो फिर भी उसी पे कायम रही और उसने फिर भी जमीन ले ली और उसको कोई खुदा का खौफ नहीं आया और वहां पे अपना घर भी बना लिया। चंद माह बाद वो बीमार पड़ गई और फिर वो अंधी हो गई, और वो अंधी हो के भी काफी अरसा जिंदा रही, यानी अब उसके लिए कितना एक मुश्किल था कि एक बंदे के पास आंखें हों और उसके बाद वो अंधी हो जाए और इसी हालत में वो जिंदा रहे। उसका एक खादिम था जो उसकी खिदमत करता था, तो एक रात क्या हुआ कि वो उसने खादिम को बुलाया, वो नहीं मिला, तो वो खुद उठी उसकी तलाश में, कोई हाजत होगी उसको, उसकी तलाश में निकली और अंधेरा था और वो अंधी भी थी, तो वो जाके उस कुएं में ही गिरी जिसका कि उन्होंने फरमाया था। अल्लाह अकबर, जिसका उन्होंने फरमाया था उसी कुएं में जाके गिरी, और वो कुआं इतना डीप था कि कोई उसकी लाश वहां से निकाल नहीं सका, और वही कुआं उसकी कब्र बन गया, वही उसकी कब्र बन गई, और वो उन्होंने उसी को कब्र कर दिया और वहीं पे। यानी उस वक्त में भी सोचें कि ऐसे लोग थे जो इस बात से नहीं डरते थे कि हम सहाबी रसूल के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। लालच इंसान को कहाँ तक ले जाता है। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, हम बचपन में ये बात सुना करते थे कि एक शख्स गुस्से की हालत में दूसरे को कहता है, तुझे अल्लाह उसी तरह अंधा करे जिस तरह अरवा नामी औरत को अंधा किया था। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। अल्लाह अकबर। उसके बाद ये भी ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहे थे और इनकी भी वफात हो गई। इनकी वफात 50 या 51 हिजरी में हुई, जब ये 70 ईयर्स के थे, और यहीं पे वादी अकीक में जहाँ पे इनका घर था, वहां पे ही कहा जाता है कि फजर की नमाज पढ़ के आए और आके लेटे, कलमा पढ़ा और रूह परवास कर गई। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि हम जुम्मे की नमाज की तैयारी कर रहे थे कि वफात की खबर सुनी, और अब्दुल्ला बिन उमर, आपको पता है कि इनके रिश्तेदारी हुए हजरत उमर के बेटे, तो वो फिर गए थे और जाके इनको लेकर आए इनकी बॉडी को, और साद बिन वक्कास और अब्दुल्ला बिन उमर जो थे, इन्होंने गुस्ल दिया और साद बिन अबी वक्कास ने जनाजा पढ़ाया। बाज जगह पे आता है अब्दुल्ला बिन उमर ने जनाजा पढ़ाया बाहर क्या, लेकिन जो है बकी कब्रिस्तान में इनको दफन किया गया। इनके एक ये भी आपने बात नोट की होगी कि जो मजलिस शूरा, जो एक कुछ लोगों को हजरत उमर ने अपनी शहादत से पहले मुंतखब किया था शूरा के लिए कि मेरे बाद कौन खलीफा बनेगा, उसमें 6 लोगों के नाम थे, हजरत उस्मान और हजरत अली तो थे ही, तलहा और जुबैर, साद बिन अबी वकास और अब्दुलरहमान बिन औफ, ये 6 थे। उस वक्त भी साइद बिन जैद जिंदा थे, लेकिन हजरत उमर ने उनको नहीं इसमें शामिल किया। बाकी 6 जो थे वो अशरा मुबशरा में से थे, लेकिन 7 उस वक्त जिंदा थे, सईद बिन जैद भी थे, उनको क्यों नहीं उन्होंने इसमें शामिल किया। और वजह इमाम ज़हबी यही लिखते हैं कि यही वजह समझ में आती है कि हज़रत उमर नहीं चाहते थे कि कभी भी कोई कहे कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों को आगे किया, जैसे अपने बेटे को नहीं किया था ना, लोगों ने कहा था आप अपने बाद अपने बेटे को खलीफा बना दे अब्दुल्ला बिन उमर, फरमाया नहीं। इसी तरह साइद बिन जैद भी इतने करीबी रिश्तेदार थे, बहनोई भी थे, बाप की तरफ से भी माँ की तरफ से भी रिश्तेदारी लगती थी, तो कोई ये ना सोचे, कोई ये ना कहे कि शायद इन्होंने अपने रिश्तेदार को कोई ओहदा देना चाहा है, बल्कि उस शूरा का हिस्सा ही नहीं बनाया। अल्लाह अकबर। तो ये थे हालात इनके, इनके बारे में। इसके अलावा कुछ ज्यादा बात नहीं हमें पता चलती किताबों में, शायद इसी वजह से कि उन्होंने खामोशी की एक जिंदगी गुजारी, यानी ऐसा नहीं था कि कोई आगे बढ़ के कहीं कुछ कोई बहुत प्रोमिनेंट रोल अदा करने की कोशिश की हो, बल्कि अगर कहीं जंगों में भी लड़ रहे हैं तो बस गुमनाम से, बल्कि किसी ने ये कहा कि हमें यही लगता था कि एक मुजाहिद है जो बहुत बहादुरी से लड़ता है, हमें ये नहीं पता होता था कि ये अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, और इतने प्यारे सहाबी के जन्नत की बशारत जिनको दुनिया में मिली हो। तो अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 सहाबा के बारे में अपने सीरीज मुकम्मल की। इनकी जिंदगियों से आपने क्या सीखा? बात ये नहीं कि आपको क्या क्या, क्या वाकयात याद है, या किसके बाप का नाम याद है, किसकी माँ का नाम याद है, कबीले का नाम याद आप कर लें, ठीक है, ये तो एक संडे स्कूल के बच्चे को भी आप याद करवा सकते हैं, रटा सकते हैं। बात ये कि आपने इनकी जिंदगी से लिया क्या, अपने लिए क्या चीज है जो आपको इम्प्रेस की क्या चीज है जिसने आपको इतना मोटिवेट किया कि मैं ये अपने अंदर ये ट्रेट पैदा करने की कोशिश करूं, मैं भी इस इनकी सिफत को लेकर और ऐसे बनने की कोशिश करूं? क्योंकि इनकी जिंदगियों से हमने सीखना है और इनकी जिंदगियों के ऊपर हमने चलना है और इनकी जिंदगी, इनको अपना रोल मॉडल बनाना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको जन्नत की बशारतें मिल गई इस दुनिया में। जिसको जन्नत की बशारत इस दुनिया में मिल जाए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। लिहाजा जरूर अपने लिए पॉइंट्स निकालें हर सहाबी की जिंदगी से कि इसमें मैंने सीखा क्या है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम एक और सहाबी के साथ बात करेंगे, एक और सहाबी की जिंदगी को देखेंगे और उनसे भी सीखेंगे। ये तमाम सहाबा कराम, चाहे वो अशरा मुबशरा में से हों, चाहे वो इनके अलावा हों, तमाम ही इतने काबिले एहतराम और इतनी ज्यादा इनकी जिंदगी के अंदर हमारे लिए सबक है कि हम चंद एक चीजें भी ले लें तो हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा संवार जाए। अल्लाह ताला इनके नक्शे कदम पे हमें चलने की तौफीक अता फरमाए कि यही सिराते मुस्तकीम। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।